يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، اے ایمان والو تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راعنا نہ کہا کرو بلکہ انظر نہ کہا کرو، یعنی ہماری طرف دیکھی اور سنتے رہا کرو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے، نہ تو اہل کتاب کے کافر اور نہ مشرکین یہ چاہتے ہیں کہ تم پر تمہارے رب کی کوئی بھلائی نازل ہو، ان کے اس حسد سے کیا ہوا، اللہ جسے چاہے اپنی رحمت خصوصیت سے عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ جس آیت کو ہم منسوخ کر دیں یا بھلا دیں اس سے بہتر یا اس جیسی اور لاتے ہیں، کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، کیا تجھے علم نہیں کہ زمین و آسمان کا ملک اللہ ہی کے لیے ہے اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی ولی اور مددگار نہیں۔ ام تریدون ان تسلوا رسولکم، کیا تم اپنے رسول سے یہی پوچھنا چاہتے ہو جو اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا تھا، سنو ایمان کو کفر سے بدلنے والا سیدھی راہ سے بھٹک جاتا ہے۔ یہ ہے آیت نمبر 104 سے 108، ان کا ٹاپک ہے الجھنے کی بجائے تم ہی راستہ بدل دو۔ ان آیات میں ایک ایسا واقعہ بیان کیا گیا کہ جو یہود نے دل کے تعصب کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنا چاہی۔ ہمیں اس وقت ان میں سے عمل کی بات کیا لینی ہے کہ جب کبھی کوئی آپ کو مقصد سے ہٹانا چاہے، کوئی آپ کو ستانا چاہے، تو لڑنے جھگڑنے مناظرے بازی بحث مباحثے کی بجائے راستہ بدل دیجئے۔ دیکھیے اس دنیا کے اندر انسان بہت سارے لوگوں کے بیچ میں رہتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمیشہ ہر چیز ہماری مرضی کی ہو، کچھ نہ کچھ تو الجھاؤ آئے گا۔ ایسے وقت میں بہتر رویہ کیا ہوتا ہے، اگنور گریسفلی، جسٹ اگنور، جانے دیجئے۔ ہر پتھر کے ساتھ اگر آپ اٹکیں گے تو آپ کے اپنے پاؤں کے ناخن ٹوٹ جائیں گے۔ زندگی میں امن اور سکون کے ساتھ جینے کا یہی نسخہ ہے کہ اپنے کام سے کام رکھیے، کوئی آپ کو اچھا کہے تو کہہ دے اور کوئی آپ کو برا کہے تو کہہ دے، اور کسی قسم کی ایسی باتیں جو مذہبی بحثیں ہوں، ایسے جھگڑے جس سے اختلافات بڑھیں، اس سے اوائڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک حق بات معلوم ہو جائے اس کے اوپر پھر انسان اپنے آپ کو جما لے اور پھر اسی پہ جم جائے۔ ود کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، ان اہل کتاب کے اکثر لوگ باوجود حق واضح ہو جانے کے محض حسد اور بغض کی بنا پر تمہیں بھی ایمان سے ہٹا دینا چاہتے ہیں، تم بھی معاف کرو اور چھوڑ دو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لائے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ لڑنے اور الجھنے کی بجائے کیا کرو، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، تم نمازیں قائم رکھو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو، اور جو کچھ بھلائی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے سب کچھ اللہ کے پاس پالو گے، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ جنت میں یہود و نصارہ کے سوا اور کوئی نہ جائے گا، یہ صرف ان کی آرزوئیں ہیں۔ ان سے کہو کہ اگر تم سچے ہو تو کوئی دلیل تو پیش کرو، سنو جو بھی اپنے آپ کو خلوص کے ساتھ اللہ کے سامنے جھکا دے بے شک اسے اس کا رب پورا بدلہ دے گا، اس پر نہ تو کوئی خوف ہوگا نہ غم اور نہ اداسی۔ یہ تھی آیت نمبر 109 سے 112، ان کا ٹاپک ہے مخالفوں کو برا کہنے کی بجائے اپنی اصلاح کر لو۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا قانون سمجھا دیا کہ اگر آج کے مسلمانوں کو یہ قانون سمجھ میں آ جائے تو وہ دنیا میں بھی باعزت قوم بن کے مزید ابھر سکتے ہیں، اور آخرت میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے نبی کے ذریعے جب قرآن پاک کی آواز مکہ اور مدینہ میں اٹھی تو لوگوں کے لیے یہ ایک نامانوس آواز تھی، کیونکہ لوگ حق سے ناشناسا ہو چکے تھے۔ لوگوں کا خیال کیا تھا کہ یہود جو پہلے سے اہل کتاب ہیں وہ اللہ کے نبی کا اگر ساتھ دے دیں گے تو ہم بھی دیں گے، کیونکہ یہ تو دیندار ہیں، اور ایک ڈاکٹر دوسرے ڈاکٹر کی صلاحیت کو جانتا ہے، اسی طرح ایک دیندار دوسرے دیندار کو جانتا ہے۔ اب لوگوں کی نگاہیں یہود کے علماء پہ لگی ہوئی تھیں، لیکن ان کے دلوں میں تو تعصب تھا، ان کے دلوں میں کچھ ایسے منفی جذبات آئے کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے انکار کر دیا۔ یہ چند لوگوں کا ماننا نہیں تھا، ان کے پیچھے وہ فوجوں کی فوجیں تھیں جو لا علم ہوتے ہیں، جو امی ہوتے ہیں، اور وہ پھر ایسے چند لیڈروں کے پیچھے ہٹنے کی بنیاد پہ وہ بھی پیچھے ہٹنے لگتے ہیں، اور ایسے دین والے لوگ پھر ان تمام کے پیچھے ہٹنے کا وبال اپنے سر پہ لے کے جاتے ہیں۔ इन्होंने अल्लाह के नबी के रास्ते में कांटे डाले, इन्होंने तकलीफें दी, आपकी जान लेने की कोशिशें की। इन बातों को सुन के एकदम दिल में आता है कि फिर हम भी इनके साथ जरा खूब अच्छी तरह निपटें, तो कहा नहीं, फाफ वस्फहू। ये है वो पॉलिसी जो इस वक्त उम्मते मुस्लिमा के लिए कारगर साबित हो सकती है। क्या? कि दुश्मनों के खिलाफ बुरे बयान देने की बजाय, उनको मुर्दाबाद कहने की बजाय, तुम उनके साथ उलझने की बजाय अपनी इसलाह करो। पहले अपना तो ताल्लुक ठीक करो रब के साथ। वाकीम उसका, नमाज तो तुम्हारी ठीक नहीं, जकात तो तुम पूरी देते नहीं, तुम कहाँ दुश्मनों के साथ मुकाबला करने निकले। दीन तरतीब के साथ चलता है। जब हम चाहते हैं कि हमें दुनिया में लोगों के साथ मामला करना आ जाए, तो हमें पहले अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक को जोड़ना चाहिए। और कहा सब्र करो। इस वक्त जितना एग्रेशन और जितना इंतशार और जितना लोगों के जहनों में ये खौफ पैदा किया गया है कि गैर मुस्लिमों के खिलाफ नारेबाजी और बातें और ये और वो, और ये जोश उठता है मजहबी तबके से। जो लोग दुनियादार होते हैं वो तो चुपके बैठे रहते हैं, वो तो किसी के खिलाफ कुछ कहते क्या हैं, वो तो अपने आप को भी मुसलमान जाहिर नहीं करना चाहते कि कहीं लोग हमें कोई तकलीफ ना दें। लेकिन जब मजहब के नाम पे, जब अल्लाह के नबी के मिंबरों से लोगों को ऐसी जोश वाली तकरीरें सुनाई जाए कि जिसको सुन के दिल चाहे कि हर बंदा पकड़े और गोली लेके दुश्मन को मार दे, तो याद रखिए कि इस्लाम ऐसे नहीं आता। कल जैसे इस्लाम आया था वैसे आ जाएगा। अल्लाह के नबी ने फर्द की इस्लाह की थी, और फर्द की इस्लाह होती है अल्लाह की किताब को पढ़ के। जितनी चीज समझ में आ जाती है अगर वो अपने अमल में आती रहे, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की तरफ से मदद भी आने लगती है। अल्लाह ताला कहते हैं, खुशफहमियों से कोई जन्नत में नहीं जाएगा, जन्नत में तो वही जाएगा जिसने अपने चेहरे को अपने रब के सामने झुका दिया। और सब्र है ही क्या कि इंसान रद्द अमल की नफ्सियात से बच के अपने आप को रब से जोड़ ले। कभी कोई बात बड़ी मुश्किल लगे तो नमाज और सब्र के साथ मदद मांगना इंसान को इंशाअल्लाह ताला कामयाब कर देगा। फिर आगे कुछ खुशफहमियों का तذکرہ है। वकालतिल यहूदु लैसतिन नसारा अला शैइन। यहूद कहते हैं कि नसरानी हक पर नहीं, और नसरानी कहते हैं कि यहूदी हक पर नहीं, हालांकि ये सब लोग तौरात पढ़ते हैं। इसी तरह की बात बेइल्म लोग भी कहते हैं। क्यामत के दिन अल्लाह ताला इनके इख्तलाफ का फैसला इनके दरमियान कर देगा। उस शख्स से बढ़कर जालिम कौन है जो अल्लाह ताला की मस्जिदों में अल्लाह के जिक्र किए जाने को रोके और इनकी बर्बादी की कोशिश करे। ऐसे लोगों को खौफ खाते हुए ही इसमें जाना चाहिए। इनके लिए दुनिया में भी रुसवाई है और आखिरत में भी बड़ा अजाब है। और मशरिक और मगरिब का मालिक अल्लाह ही है। तुम जिधर भी मुंह करो उधर ही अल्लाह का मुंह है। अल्लाह तला कुशादगी और वसअत वाला और बड़े इल्म वाला है। ये कहते हैं कि अल्लाह की औलाद है, नहीं बल्कि वो पाक है। जमीन और आसमान की तमाम मखलूक इसकी मलकियत में है और हर एक उसका फर्मा बरदार है। बदी उस समावाती वल अर्द व इजा कदाम रन फन्नमा यकूलु लहू कुन फयकून। वो जमीन और आसमानों का इब्तदान पैदा करने वाला है। वो जिस काम को करना चाहे कह देता है कि हो जा, बस वो वहीं हो जाता है। ये थी आयत नंबर 113 से 117, 113 to 117। इनका टॉपिक है, फिरकेबाजी ने अल्लाह के घरों को वीरान कर दिया। हर दौर में जब लोगों की निस्बतें इंसानों के साथ जुड़ने लगें और इसी निस्बत की बुनियाद पे वो अपने आप को जन्नती करार दें, तो ऐसी कौमें मुख्तलिफ गिरोहों में बढ़ जाती हैं। छोटी छोटी रसदगाहें कायम कर ली जाती हैं, जिसको चाहे मस्जिद का नाम दे दिया जाए या इदारे का नाम दे दिया जाए। कहा तो उसको अल्लाह का घर जाता है, लेकिन असल में वो चंद लोगों की इजारादारी बन जाती है जो उनके मुफादात को फायदा देने के लिए इस्तेमाल होती हैं। कुछ ऐसी ही खुशफहमियाँ कल भी थीं और आज भी दिखती हैं। यहूद ने अल्लाह के नबियों के साथ वाबस्तगी को अपने जन्नत में जाने की दलील बनाया। नसारा ने कहा कि अल्लाह ने अपना इकलौता बेटा हमारे बीच में भेज दिया, इसलिए हम जन्नत में जाएंगे। और मुशरिकीन मक्का कहने लगे, चूंकि खाना काबा के मतवल्ली हैं इसलिए हम जन्नत में जाएंगे। अल्लाह ताला कहते हैं कि जन्नत में जाने के लिए दावे नहीं, उसकी दलील चाहिए। अब एक दूसरे की इबादत गाहों का हाल क्या करते, जब मौका मिलता उसको जाके वीरान कर देते, उसके अंदर कोई गंदगी डाल आते, कोई उसके साथ गलत मामला कर देते। अल्लाह ताला कह रहे हैं, कोई खुदा का खौफ करो, तुम दीन के नाम पे इतने बंटवारे क्यों करते हो। आज उम्मते मुस्लिमा को देखिए तो क्या दुख और तकलीफ के साथ ये नहीं कहा जाता कि आज मस्जिद अल्लाह का घर तो होती ही है, लेकिन उसके अंदर भी हमने अपने नामों की प्लेट्स लगा रखी हैं। हम उसके अंदर उसको दाखिल होने देंगे जो हमारी सोच रखता है, जो हमारी जमात से ताल्लुक रखता है, हमारा कोई फॉर्म फिल करता है, जो हमारा बनता है उसको तो हम आने देंगे और दूसरा उसमें नहीं आएगा। जब कभी मस्जिदें इस तरह लोगों के नामों पे बनने और रहने लगे तो याद रखिए कि फिर वो वीरान होती हैं। आज दुनिया में इतनी मस्जिदें हैं, कितनी है जो जुमे की नमाज के अलावा खुलती नहीं है। क्यों वीरान है आज? आज मस्जिदें तो इतनी बड़ी हैं कि आप कई कई एकड़ में उसको देख सकते हैं, लेकिन नमाजी कहाँ हैं? कहाँ है वो नमाजी जो इधर आके फजर के वक्त और दिन के और मुख्तलिफ वक्तों में नमाजें अदा करें और अल्लाह के नाम का जिक्र बुलंद करें? वो सब चले गए, उन्होंने छुट्टी ले ली कि ये तो जी एक दूसरे को बुरा कहते हैं, हम नहीं जाते। हम जाएंगे जुमे की नमाज में कब? जब मिंबर से मौलवी सब उतर रहे होंगे और जाके सफ में खड़े होके हम जुमे का फर्ज टाल के आ जाएंगे। मस्जिदें वीरान हो गई और हर वो घर वीरान हो जाएगा जिसके बनाने की कोई इंटेंशन अल्लाह की रजा के सिवा कोई और होगी। जब आप लोगों को नामों से जोड़ेंगे, जब आप लोगों को इदारों से जोड़ेंगे, जब आप लोगों को मसलकों और जमातों से जोड़ेंगे, तो याद रखिए वो इदारे नहीं रहेंगे। आहिस्ता आहिस्ता लोगों की तवज्जो हटने लगती है। अल्लाह ने समझ दी है लोग अल्लाह का बनना चाहते हैं, वो आपका क्यों बने? लोग अल्लाह वाले बनेंगे, वो आप वाले क्यों बने? आज भी अगर कोई दीन के नाम पे वुसअत चाहता है, फराखी चाहता है, तो उसको वुसअत कल्बी का सबूत देना होगा, क्योंकि अल्लाह ने अपनी दो सिफात इन्नल्लाह वासिउन अलीम ये दो क्राइटेरियन दे दिए कि वुसअत कल्बी और इल्म। इल्म में तो पुख्तगी करो, इल्म तो है नहीं, तुम कैसे लोगों को जमा करोगे? तुम्हारे दिल में वुसअत तो है ही नहीं, तुम्हारी सोच तो इतनी मुख्तसिर है, कैसे अल्लाह के घर आबाद होंगे? ये दो खूबियां चाहिए अल्लाह के घरों को आबाद करने के लिए, और ये कब होती हैं? जब इंसान एक बड़ी तस्वीर देखता है, जब हमें मिल्लत इस्लामिया प्यारी होगी ना, जब हम इस बात पे गम खाएंगे ना कि लोग मुसलमान क्यों नहीं है, इतने लोग नमाज क्यों नहीं पढ़ते, फिर हम इस बात को भूल जाएंगे कि वो कैसे पढ़ते हैं, फिर हम सिर्फ छोटी छोटी चीजों को बुनियाद बना के मस्जिदों को अलग नहीं कर लेंगे। आज दीन का काम शुरू होता है, 10 15 20 लोग मिलके करते हैं, 2 4 साल के बाद वो एक काम 4 मस्जिदों में क्यों बढ़ जाता है? 1 2 साल के बाद किसी एक साहब का मिजाज बदला, उन्होंने कुछ लोगों को लेके अलग मस्जिद बना ली, दूसरे ने कहा हम भी ले सकते हैं, फिर चंदे, फिर वही। ये क्या हो रहा है? क्या ये दीन है? अल्लाह ताला हमें सच्चा दीन दे दे। असल मकसद जब तक पूरा नहीं होगा तब तक मस्जिदों की आबादी नहीं होगी। और अल्लाह ताला ने यहाँ बता दिया कि वो लोग जो अल्लाह से जुड़ते हैं, फिर अल्लाह के हुक्मों को मानने लगते हैं, फिर अल्लाह उनके काम कैसे कराता है? सिर्फ कुन की देर है, अल्लाह कामों को करवा देता है। असल बात ये थी कि अल्लाह से ताल्लुक जोड़ा जाए और अल्लाह ताला हमें फिरकाबाजी से बाज रख के सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की जात के साथ जुड़ने और जोड़ने वाला बना दे। وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية। इसी तरह बेइल्म लोगों ने भी कहा कि खुद अल्लाह ताला हमसे बातें क्यों नहीं करता, या हमारे पास कोई निशानी क्यों नहीं आती। इसी तरह ऐसी ही बात इनके अगलों ने भी कही थी, इनके और उनके दिल यकसां हो गए। हमने तो यकीन वालों के लिए निशानियां बयान कर दी, हमने आपको हक के साथ खुशखबरी देने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा, और जहन्नमियों के बारे में आपसे बासपरस नहीं होगी, आपसे यहूद नसारा हरगिज राजी नहीं होंगे जब तक कि आप इनके मजहब के ताबे न बन जाएं। आप कह दीजिए कि अल्लाह की हिदायत ही हिदायत है, और अगर आपने बावजूद अपने पास इल्म आ जाने के फिर भी इनकी ख्वाहिशों की पैरवी की, तो अल्लाह ताला के पास आपका ना तो कोई वली होगा और ना कोई मददगार। अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यतलूनहु हक्क तिलावती, जिन्हें हमने किताब दी और वो इसे पढ़ने के हक के साथ पढ़ते हैं, वो इस किताब पर भी ईमान रखते हैं, और जो इसके साथ कुफर करे वो नुकसान वाला है। ये थी आयत नंबर 118 से 121। इनका टॉपिक है गिरोही मोहब्बत दीनी मोहब्बत पर गालिब आ गई, यानी गिरोह की मोहब्बत, फ़िरके या सेक्ट की मोहब्बत दीन की मोहब्बत पर गालिब आ गई। इन आयात में दोबारा वही माहौल सामने रखा गया जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में था। होता क्या है कि अल्लाह के कुछ बंदे जब लोगों को अल्लाह के दीन की तरफ बुलाते हैं तो अमूमन उनके साथ एक ही जैसा मामला पेश किया जाता है, और वो क्या कि अगर तुम वाकई अल्लाह के बंदे हो तो बताओ तुम्हारे पास खजाने क्यों नहीं। अल्लाह के नबी के हक पे ना होने की बहुत बड़ी लोगों को वजह देते थे कि देखो अगर ये सच्चा नबी है तो फिर दौलत किधर है, फिर अर्दली किधर है, फिर आगे पीछे इनके कोई सलाम करने वाले क्यों नहीं। ये वो लोग होते हैं जो मादा परस्त होते हैं, जो मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में रहते रहते दुनियावी चीज़ों को ही किसी इंसान की तरक्की का जरिया बना लेते हैं। हालांकि हकीकत यह है कि जब कोई अल्लाह के दीन की तरफ बुलाता है तो बज़ाहर उसके अंदर कोई ज़ाहरी चकाचौंध नहीं होती, और उसके मामूली होने को बाज़ लोग उसके हक पे ना होने की दलील समझ लेते हैं। अल्लाह ताला कहते हैं कि वो शख्स जो मेरे नाम पे उठता है वो हल्का कैसे हो सकता है, उसके साथ तो मेरी मदद होती है। और यही वो शख्स है कि जो अपने साथ दलील लेता है, और इसकी दलील पे जो मानेगा वही असल में दीन इस्लाम के अंदर दाखिल होगा। अपने वक्त में यहूद और नसारा भी अल्लाह के दीन के नुमाइंदे थे, लेकिन जवाल का शिकार हुए तो अपने अपने गिरोह के साथ मिल गए और एक दूसरे को झूठ पे कहते हैं। आप देखिए कि कितना आसान है किसी को जहन्मी कहना, कितना आसान है आज के दौर में भी किसी को काफिर कहना, कितना आसान है किसी को मुनाफिक कहना। अपनी खबर नहीं, दूसरों के हाल पे इंसान तनकीद करता रहे, ऐसे वक्त में अल्लाह से एक दुआ करनी चाहिए कि अल्लाहुम्मा अरिनल हक हक्कन वरज़ुक्ना इत्तबाअहू, ए अल्लाह हक को हक करके दिखा और मुझे इसकी पैरवी की तौफीक अता फरमा, और बातिल को बातिल करके दिखा और मुझे इस बातिल से फिर रुकने वाला बना दे। और इसके लिए इंसान अल्लाह ताला से गहरा ताल्लुक कायम करे, और ताल्लुक कायम होता है अल्लाह की किताब के साथ। अभी तक जितनी आयतें हमने पढ़ी ये बनी इसराइल के तनाजर से थी, अब आखिरी आयत हमारे सामने है जहाँ से बनी इसराइल का किस्सा तमाम होता है। या बनी इसराइल अस्कुरु नेमती अल्लती अनमतु अलैकुम, ए औलादे याकूब, मैंने जो नेमतें तुम पर इनाम की हैं इन्हें याद करो, और मैंने तो तुम्हें तमाम जहानों पर फजीलत दे रखी थी। वत्तकु यौमन ला तज्जी नफ्सुन नफ्सिन शैया वला युक्बलु मिन्हा अदलुन वला तन्फउहा शफा, उस दिन से डरो जिस दिन कोई नफ्स किसी नफ्स को कुछ फ़ायदा न पहुंचा सकेगा, न किसी शख्स से कोई फ़दिया कबूल किया जाएगा, न उसे कोई शिफात नफ़ा देगी, न उनकी मदद की जाएगी। ये कौन सा दिन होगा? क़यामत का दिन। वइज़्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन, जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इनके रब ने कई कई बातों से आजमाया और उन्होंने सबको पूरा कर दिया, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं तुम्हें लोगों का इमाम बना दूंगा। अर्ज करने लगे, और मेरी औलाद को? फरमाया, मेरा वादा जालिमों से नहीं है। ये थी आयत नंबर 122 से 124, 122 से 124। इनका टॉपिक है इमामत और क़यादत, कुर्बानियों के बाद मिलती है। इन आयात में हमने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तذکرہ सुना। कौन थे इब्राहीम अलैहिस्सलाम? ये अल्लाह के चुने हुए बंदे थे, आज से 4,000 साल पहले की शख्सियत थे। अल्लाह ने इनको आजमाया और आजमाने के बाद नबुवत मिली। या एक छोटी सी बात जिसका ताल्लुक मजमून से नहीं लेकिन तजवीद से है, और उन लोगों के लिए एक सोच देनी मकसूद है कि जो कुरान पाक को दुरुस्त तरीके से पढ़ने को अहम नहीं समझते। यहाँ लफ्ज़ है व इज़्तला इब्राहीम रब्बुहु, और जब आजमाया इब्राहीम को उसके रब ने। अगर आप इस आयत को यूं पढ़ लेना कि व इज़्तला इब्राहीम रब्बहु, तो ये शिर्क हो जाएगा। तर्जुमा क्या बन जाएगा? कि जब आजमाया इब्राहीम ने अपने रब को। सिर्फ ज़बर और पेश के फ़र्क से मानी बदल जाता है। इसलिए दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमारे लिए कोई ऐसा भी सिलसिला कर दे कि हम इस सफ़र के बाद फिर अपने कुरान पाक को भी सही तरह से समझने के काबिल बन सकें। तो हम बात कर रहे थे इब्राहीम अलैहिस्सलाम की। अल्लाह ताला कहते हैं, मैंने इब्राहीम का इम्तिहान लिया। क्या इम्तिहान था इब्राहीम का? इनकी अक़ल का इम्तिहान था। कैसे? शिर्क के माहौल में पैदा किए गए। बाप भी मुशरिक, कौम भी मुशरिक, लेकिन बचपन से ही इन्होंने अपनी फितरत को मसख नहीं होने दिया और उस शिर्क वाले माहौल से अपने आप को बचा लिया। और इम्तिहान था इनकी हिम्मत और इरादे का, कि हत्ता के वक्त के बादशाह नमरूद के सामने खड़े कर दिए गए और उनको ऐसे दलाइल दिए। इंशाल्लाह तीसरे पारे के आगाज़ में आप लोग भी उनमें से कुछ चीज़ें सुनेंगे। और क्या इम्तिहान था? मोहब्बतों का इम्तिहान था। बीवी और बच्चे को तन्हा एक ऐसी जगह पे छोड़ने का इम्तिहान था कि जहाँ से कुछ भी ना पैदा होता ना दिखता, लेकिन अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कामयाब किया। जितनी बड़ी नेमत दुनिया में मिलती है ना, उससे पहले उतनी बड़ी आजमाइश आती है। हम में से कितने लोग कई मौके पे चुने जाने के बिल्कुल करीब होते हैं, लेकिन हम गिव अप कर देते हैं। हम उस आजमाइश में पूरे नहीं उतरते और हम कहते नहीं, बस अब और बातें नहीं सुनी जाती, अब और कुर्बानी नहीं दी जा सकती। ये वही वक्त है कि आप किसी मंजिल के बिल्कुल करीब हों और मायूस होकर पलट आएं, और जब बाद में आपको पता चले कि अच्छा बस अगली ही गली में वो घर था, मैं क्यों आ गई, वो जो रिग्रेट फील होता है, यही रिग्रेट कल क्यामत के दिन महसूस होगा, जब हम अपनी अधूरी कोशिशों को अल्लाह के यहाँ नाकाबिले कबूल होता देखेंगे। इब्राहिम की ज़ात हम सब के लिए एक बेहतरीन नमूना है। अल्लाह ताला ने उनको चुना था उस वक्त अपने काम के लिए, जब दुनिया के अंदर इसका रिवाज भी नहीं था, और ये वो वक्त होता है कि जब अल्लाह किसी बंदे को किसी ऐसी जगह के लिए चुन ले कि जहाँ कोई बंदा काम करने वाला ना हो। और यही वो कुर्बानियाँ होती हैं जो नस्ल दर नस्ल तक रहती हैं। बाद में इनकी नस्ल के जरिए से भी अल्लाह ताला ने ये काम कराना चाहा। बनी इसराइल इन्हीं की कौम थी, लेकिन इन्होंने सोचा कि चूंकि इब्राहिम चुने गए थे तो हम भी चुने गए, अब हमें काम करने की जरूरत नहीं। और उन्होंने मनसब की फजीलत को नस्ली और गिरोही फजीलत के मुवाफिक समझा। वो ये भूल गए कि दुनिया में कोई किसी के नस्ब की वजह से जन्नत में नहीं जाएगा, उसके लिए हर बंदे को काम करना पड़ेगा। आज दुनिया में लोग किसी के कहने पे कुछ मदद कर देते हैं, लेकिन कल क्यामत का दिन जब आएगा, हर बंदा अल्लाह की अदालत में तन्हा खड़ा होगा। वहाँ कोई किसी की सिफारिश, किसी को कोई मुआवजा देकर, किसी की मदद ले जाने का तसव्वुर करके जाने वाले वहाँ मायूस हो जाएंगे। ऐसे वक्त में फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम जैसे किरदार, जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी अपने रब के हुक्मों पे गुजार दी, वही कामयाब होंगे। इब्राहिम का तरीका क्या था कि वो अल्लाह के इन फैसलों पे राजी रहे जो अल्लाह ने उनके साथ किए। ऐसी ही आजमाइशों के वक्त में इंसान अगर जम जाए, जब भी आप दीन का काम करेंगे आपको आजमाइशें आएंगी। अगर आप हिकमत अमली के साथ टकराव की पॉलिसी को इख्तियार ना करके अगर आप जमे रहेंगे, एक वक्त आएगा कि अल्लाह ताला आपकी ज़ात से भी खैर के ऐसे पौधे उगाएगा कि जिसकी छांव में फिर आने वाली नस्लें बैठेंगी। और आज का दौर इस बात का तकाजा करता है, खास तौर पे वो लोग जो दुनियावी मैदान में आगे बढ़ चुके हैं, पढ़े लिखे लोग जो इस दुनिया में रहने के तरीके आज की जदीद टेक्नोलॉजी को जानते हैं। ऐसे लोगों को दावत है कि वो अल्लाह के दीन की तरफ बढ़े, और फिर वो लोग उन जमीन के टुकड़ों पर जहाँ आज वाकई बाहरी तौर पे तो बंजर जमीनें नहीं हैं। इब्राहिम ने तो अपने घराने को एक बंजर जगह पे रखा था कि जहाँ कोई पत्ता भी नहीं था, जहाँ घास फूस नहीं थी, लेकिन आज दुनिया के वो सरसब्ज इलाके कि जहाँ अल्लाह की रहमतें बरस रही हैं, जहाँ हर लम्हे आप अपने आप को ऐसे महसूस करते हैं कि जैसे आप जन्नत की नेमतों में, लेकिन देखा जाए तो दीन की तरफ से वो इलाके आज भी बैरन है। आज वहाँ कुछ नहीं दिखता, ऐसे लगता है दूर दूर तक लादीनियत है, बेदीनियत है। और लोग पलट पलट के आना चाहते हैं कि बस अब बहुत हो गया, अब वापस चलो और अल्लाह के दीन को सहारा बनाओ। ऐसे वक्तों में इब्राहिम की सुन्नत को अदा करने वाले, अल्लाह तू हमसे भी ये सुन्नतें अदा करवा और हमें जमीन के उन टुकड़ों पर ले जा कि जहाँ हमारी वजह से कुछ बीज डल जाए, कि जिसकी फसल जिसकी खेती कलाने वाले लोग काट सके। और अगर आज हम में से कुछ लोगों ने भी अगर इसकी जिम्मेदारी को ना निभाया तो आने वाली नस्लें हम पे लानतान करेंगी, और अल्लाह ना करे कि हम अपनों ही की बददुआओं का शिकार होने लगे। आगे अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बातें चलती जाएंगी। वइस जअलनल बैत मसा बतलिन्नासि व अमना, हमने बैतुल्लाह को लोगों के लिए सवाब और अमनो अमान की जगह बनाई। तुम मुकाम इब्राहिम को जाए नमाज मुकर्रर कर लो। हमने इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम से वादा लिया कि तुम मेरे घर को तवाफ करने वालों और एतिकाफ करने वालों और रुकू और सजदा करने वालों के लिए पाक साफ रखो। जब इब्राहिम ने कहा है परवरदिगार तू इस जगह को अमन वाला शहर बना और यहाँ के बाशिंदों को और जो अल्लाह ताला पर और क्यामत के दिन पर ईमान रखने वाले हों फलों की रोजियां दे, अल्लाह ताला ने फरमाया मैं काफिरों को भी थोड़ा फायदा दूंगा, फिर इन्हें आग के अजाब की तरफ बेबस कर दूंगा, और ये पहुंचने की बहुत बुरी जगह है। ये थी आयत नंबर 125 और 126, 125 और 126। इसका उनवान है असल इमामत अल्लाह की नुमाइंदगी के लिए चुनाव है। दुनिया में बहुत सारे लोग इमाम बने रहते हैं, कुछ मजहबी इमाम, कुछ माशरती इमाम, कुछ लीडर्स, कुछ इन लीड टाइप के लोग, और जो जहाँ अपना इजहार कर सकता है वहाँ बड़ा बन जाता है। लेकिन असल बात यह है कि इमामत वही है कि अल्लाह ताला किसी बंदे को अपने काम के लिए चुन ले, और जो बंदा अल्लाह के काम के लिए चुना गया वो अपने वक्त का इमाम है। और ऐसे इमाम बनने के लिए कुर्बानियां देने की जरूरत पड़ती है, ऐसे इमाम बनने के लिए फिर अपने घर बार को तज देने की जरूरत पड़ती है, फिर अपने खाने पीने को मुख्तसर करने की जरूरत पड़ती है, फिर अपने साथ साथ अपनी नस्लों को अपनी औलादों को दीन के कामों में लगाने की जरूरत पड़ती है, जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नन्हे इस्माइल को अपने साथ लगाया जिसका तذکرہ अगली आयतों में आता है। वइस जरफ़ इब्राहिम उल कवाइद मिनल बैति व इस्माइल, इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम काबा की बुनियादें और दीवारें उठाते जाते थे और कहते जा रहे थे कि हमारे परवरदिगार तू हमसे कबूल फरमा, तू ही सुनने वाला और जानने वाला है, ए हमारे रब हमें अपना फरमा बरदार बना ले और हमारी औलाद में से भी एक जमात को अपनी इताअत गुजार रख और हमें अपनी बातें सिखा और हमारी तौबा कबूल फरमा, तू तौबा कबूल फरमाने वाला और रहमो करम करने वाला है। ऐ हमारे रब, इनमें इन्हीं में से रसूल भेज जो इनके पास तेरी आयतें पढ़े, इन्हें किताबो हिकमत सिखाए और इन्हें पाक करे। यकीनन तू गलबे वाला और हिकमत वाला है। ये थी आयत नंबर 127 से 129, 127 to 129। इनका उनवान है, दीन की जगह बनानी ही नहीं बल्कि आबाद भी रखनी है। इसी तरह स्लैश डाल के दूसरा भी टॉपिक लिख सकते हैं, मुअल्लिम की ज़रूरत जगह से ज़्यादा। इन आयतों में हमने देखा कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने नन्हे बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर अल्लाह का घर तामीर कराया। बैतुल्ला क्या है? एक मरकज़ है, एक इंतज़ाम वाली जगह है कि जहाँ से हिदायत के सूते फूटे और आने वाले वक्तों में वहाँ से हिदायत हुई। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ये नेकी क्यों दी? इसलिए कि इन्होंने इससे पहले कुर्बानी को कबूल किया था, अपनी बीवी और अपने बेटे को कुर्बान कर दिया अल्लाह के रास्ते में। आज हम एक वक्त का खाना न मिले तो हम परेशान होने लगते हैं। अगर आज हमारी बीवी ज़रा दीन के कामों में मसरूफ़ हो जाए और वो घर को थोड़ा ठीक ना कर सके और कुछ नहीं खाना तो क्या सिर्फ सलाद और चटनी ना बने तो हम गुस्सा खाने लगते हैं। क्या हमें हक है कि हमारा नाम इब्राहिम हो? क्या हमें हक है कि हमारा नाम इस्माइल हो? बाज़ अवक़ात दो दो नबियों के नामों को जोड़ के हमारे नाम रखे जाते हैं लेकिन हमारे अंदर कुर्बानी का वो जज्बा नहीं होता। दीन कुर्बानियों से फैलता है। अगर हम सब अपने घरों और अपनी औलादों और अपनी ज़ाती ज़िंदगी और अपनी तिजारतों को पकड़ के बैठ जाएंगे हम तो खूब फल फूल जाएंगे, लेकिन ये नहीं पता कि ये फलना फूलना हमने देखना भी है कि नहीं। हम दुनिया से जब जाएंगे हमारे साथ कुछ भी नहीं होगा। हमारे प्यारे घरों में कोई एक रात हमें हमारे मरने के बाद नहीं रहने देगा। हमारे बेडरूम में कोई हमारी कब्र नहीं बनाने देगा। कोई नहीं कहेगा कि इन्हीं घरों को चिमटी रहती थी, आज इसको यहाँ से अलग ना करो, हमें मनो मट्टी के नीचे छोड़ आएंगे। उस वक्त जो चीज़ हमारे साथ जाएगी वो हमारी अल्लाह के रास्ते में की हुई कुर्बानियाँ जाएंगी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को साथ मिला के अल्लाह का घर बना रहे हैं और काबिलियत पर नाज नहीं कबूलियत का फिक्र है कि रब्बना तकब्बल मिन्ना। और असल बात भी यही है, आप कितने ही काबिल क्यों ना हो और अगर कोई आपको कबूल ना करे तो आपकी क्या कीमत लगी। हम बड़ी बड़ी नेकियां करते हैं, खूब रौनक मेले वाली नेकियां करते हैं, खूब खाने पीने वाली नेकियां करते हैं, लेकिन ये कम ही सोचते हैं कि अल्लाह तू कबूल भी कर रहा है कि नहीं, ये कहीं दुनिया में ही ना रह जाए और तेरे पास इसमें कुछ भी ना जाए। फिर हमने देखा कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी औलाद के लिए फलों का रिस्क मांग रहे हैं। दुनिया मांगना बुरी नहीं, औलाद के लिए दुनिया की नेमतें मांग सकते हैं लेकिन सिर्फ दुनिया नहीं मांग सकते, क्योंकि जब हम सिर्फ दुनिया मांगते हैं तो वो फिर हमारे ही नहीं रहते। फिर अगली चीज़ हमने इस हिस्से से सीखी कि अपने साथ औलाद की नेकियों की दुआ करना। दीन के काम में तन्हा मत चलिए, ये रास्ते तन्हा तय नहीं होते। जब अपनों का साथ मिल जाता है तो आप अपने आप को मजबूत महसूस करते हैं। अगर आपके दिल में अल्लाह के कलाम की मोहब्बत आ रही है तो अपने साथ फिर अपनी औलादों को लेके बैठिए, अपने घर वालों को दावत दीजिए, और अगर आपको अल्लाह का कलाम कुछ फ़ायदा दे रहा है तो अपनी दोस्तों और अपनी साथियों को साथ लेके निकलिए ताकि कल आपका दीन खतरे में न चले। क्योंकि अगर आप कोई काम करें और कोई दूसरा वो काम वैसे ना कर रहा हो तो वो आपको भी रोक लेगा। फिर एक और चीज़ इस हिस्से में बड़ी खूबसूरत है, आप हाईलाइट करेंगे उसको, आयत नंबर 128 की है कि वह अरिना मनासिकना वतुब अलैना। ए अल्लाह, घर तो बना दिया, अब इबादत के तरीके तो सिखा। घर इब्राहिम ने बना लिया, इबादत के तरीके पूछे, खुद क्यों नहीं बना लिए? क्या इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह से मोहब्बत नहीं थी? किसी को शक है उनकी मोहब्बत में? हरगिज़ नहीं। क्या अल्लाह को इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मोहब्बत नहीं थी? थी, कोई शक नहीं इसमें कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नीयत पाकीज़ा थी, यकीनन थी। क्या उनके अंदर खुलूस था? बिल्कुल था। तो फिर इब्राहिम ने ये क्यों ना किया कि खुद ही तरीका इबादत बना लेते? घर तो बना लिया, हज करने का और वहाँ उम्रा करने का तरीका खुद इजाद क्यों नहीं किया? इसलिए कि तरीका इबादत इजाद नहीं किए जाते। किसी नबी को भी इसकी इजाज़त नहीं कि वो अपनी मर्जी से कोई तरीका इबादत इजाद करे। ये आज इख्तियार हमने अपने आम लोगों तक को दे दिया, जिसका जो दिल चाहता है वो करता है और आखिर पूछे तो कहते हैं हरज क्या है। हरज ये है कि अल्लाह का हुक्म नहीं है, हरज ये है कि आप नेकी की बजाय गुनाह के मुर्तकिब हो जाएंगे। छोटी सी मिसाल दूंगी कि आप जिस मुल्क में रहते हैं वहाँ रहने के कई कानून हैं। गाड़ी में बैठते हैं आपको सुर्ख लाइट पे रुकना पड़ता है, आप क्यों नहीं ग्रीन पे रुकते? क्या हरज है? कोई नहीं है सामने, आप स्टॉप साइन पे क्यों रुक रहे हैं? चलते जाइए। हरज ये है कि वो आपको पकड़ लेंगे, आपको टिकट देंगे। आपको इस मुल्क में रहना है तो आपको इनके कानून मानने पड़ेंगे। तो क्या फिर अल्लाह के कानून नहीं मानने के होंगे? क्या आप अपनी मर्जी से वहां अपनी मर्जी से जिसका जो दिल चाहे? एक अनपढ़ खातून भी दीन के नाम पे एक वजीफा शुरू करे और मना करें तो कहते हैं हरज क्या है? हरज वही है कि अल्लाह का दीन बंदों के लिए मानने की चीज है, बनाने की चीज नहीं है। और आप देखिए कि वबस फीहिम रसूलम मिनहुम, पहले औलाद के लिए दुनिया की दौलत मांगी और अब औलाद की रूहानी तरबियत के लिए एक उस्ताद मांग रहे हैं। और ऐसे ही लोग अकलमंद होते हैं कि जो दुनिया में ही अपनी औलादों के दीन की फिक्र कर लें। और ऐसा ही एक बाप जब दुनिया से जाते जाते अपनी औलाद को पूछ रहा है, क्या आगे हम देखेंगे, वमन यरगबु अम मिल्लति इब्राहीम इल्ला मन सफिह नफ्सा। दीन इब्राहिम से वही बेरगबती करेगा जो महज बेवकूफ हो। हमने तो इसे दुनिया में भी बरगजीदा किया था और आखिरत में भी वो नेकूकारों में से है। जब कभी भी इन्हें इनके रब ने कहा फरमा बरदार हो जा, उन्होंने कहा मैंने रब्बुल आलमीन की फरमा बरदारी की। इसी की वसीयत इब्राहिम और याकूब ने अपनी औलाद को की कि हमारे बच्चों, अल्लाह ने तुम्हारे लिए इस दीन को पसंद फरमा लिया, खबरदार तुम मुसलमान ही मरना। अम कुंतुम शुहदा इज़ हज़र याकूब अल मौत, क्या हज़रत याकूब के इंतकाल के वक्त तुम मौजूद थे? जब उन्होंने अपनी औलाद से कहा कि तुम मेरे बाद किसकी इबादत करोगे, तो सब ने जवाब दिया कि आपके माबूद की और आपके आबाओ अजदाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम और इसहाक अलैहिस्सलाम के माबूद की, जो माबूद एक ही है और हम इसी के फरमा बरदार रहेंगे। तिलका उम्मतुन कद खलत लहा मा कसबत वलकुम मा कसबतुम, ये जमात तो गुजर चुकी, जो उन्होंने किया वो उनके लिए है और जो तुम करोगे वो तुम्हारे लिए है, इनके अमाल के बारे में तुम नहीं पूछे जाओगे। ये थी आयत नंबर 130 से 134, 130 to 134। इसका उनवान है इब्राहिम अलैहिस्सलाम का तरीका इतात वाला था, बाद वालों का खुशफहमियों वाला बन गया। हमने इस हिस्से में अल्लाह के अंबिया कराम की सुन्नत देखी कि किस तरीके से वो अपनी ज़िंदगी में भी अपनी औलादों की नेकी पर रहने की ख्वाहिश रखते थे और इसी के साथ साथ फिर वो अपने जाने के बाद अपनी औलादों के दीन की फिक्र करते थे। आज भी कोई दुनिया से जाते वक्त किस गम में रहता है, बच्चों का क्या होगा, बेटियों के भी शादी नहीं हुई, बेटे अभी जॉब पे नहीं लगे, लेकिन अकलमंद माँ बाप इस बात की फिक्र करते हैं कि हमारे जाने के बाद हमारे बच्चे क्या करेंगे। एक लम्हे के लिए ज़रा हम अपने आप से पूछें, अल्लाह ना करे और अल्लाह सबको लंबी उम्र दे, लेकिन अगर इन्हीं हालात में हमारा दुनिया से जाने का वक्त आ जाए और कोई पूछ के नहीं आएगा, ना किसी के कहने से आएगा ना रुकेगा, तो हम पूछें कि हम अपने पीछे क्या छोड़ के जा रहे हैं? क्या हम अपनी औलादों की सही तरबियत कर चुके? क्या उनको अल्लाह की किताब से जोड़ चुके? क्या हमारी औलादें अल्लाह की मोहब्बत में चूर चूर हो गईं? क्या उनको एक रब की मार्फत इतनी बढ़ गई कि वो सारी चीज़ों से बेन्याज हो गए? क्या उनके अंदर ईमान और तकवा इतना बढ़ गया कि वो कान न कतराहू की कैफियत में हर जगह अल्लाह को महसूस करें? हम कहाँ तक अपनी औलादों के पीछे जाएंगे? हर लम्हे तो हम उनकी देखभाल नहीं कर सकते। अगर हमने अपनी ज़िंदगी में उनको अल्लाह से ना जोड़ा तो याद रखिए कि न जाने कल क्या होगा। और हज़रत याकूब को कितनी प्यारी मौत आई होगी जब औलादों ने कहा कि अब्बा आप गम ना करें, हम इस्लाम पे मरेंगे। आज तो इस वक्त मैं देखती हूँ इंसानियत को जो गम लग रहा है कि हमारे बाद नस्लें इस्लाम पे भी रहेंगी कि नहीं। पहले माँ को गम क्या था कि रिश्ता बच्ची का हम तय करेंगे। पहले लव मैरिज एक गाली समझी जाती थी, आहिस्ता आहिस्ता उसको कबूल किया गया कि अच्छा करनी हो तो हमें बता दो, और फिर घर देखा जाता था, कुछ ना कुछ हालात ठीक होते थे तो कर दी जाती थी। लेकिन इस वक्त जो मैं माँ बाप की मजबूरियां देखती हूँ कि उनको सिर्फ बच्चों से एक ही अंदेशा है कि जो मर्जी करो लेकिन मुसलमान से करना, अगर लड़की मुसलमान है जो भी ना मुसलमान है तो ठीक है, और उससे भी भड़के अब तो माँ बाप इतने मजबूर देखे गए कि हिंदू और काफिर बच्चों के साथ बेटियों की शादियां करते देखे गए। क्या करें फिर, बच्चों की शादी है फिर इनकी मर्जी, हम क्या करें? हम कुछ ना करें लेकिन ये बात तो रियलाइज करें कि हमने अपनी औलादों को अपने रब से नहीं जोड़ा और वो हमारे भी नहीं रहे। हम रब के नहीं बनते ना तो वो हमारे भी नहीं रहते। तू मेरा नहीं बनता अपना तो बन, ये वो वक्त आ गया कि आज की माँ को अल्लाह की किताब से जुड़ने की जरूरत है। आज भी माँ गफलत में, आज भी माँ सोई हुई है, आज भी उसको खाना पकाना ज्यादा प्यारा हिदायत से, आज भी उसको अपना घर सजाना शीशा जमा करते रहेंगे और हीरों से कीमती अपनी औलाद को सड़कों पर छोड़ देंगे, चंद कागज के टुकड़े जमा करने के लिए औलादों को गैरों की गोद में डाल देंगे, तो कैसे तोहफे देके जा रहे हैं? सिर्फ अगली 2-4 नस्लों के बाद का सोचिए, जिस तेजी से दीन फैलता जा रहा है, हमारे घरों से उतना ही निकलता जा रहा है, जिस तेजी से लोग इस्लाम की तरफ आ रहे हैं, कुफर से इस्लाम की तरफ, उतनी तेजी से मुसलमान इस्लाम को छोड़ते जा रहे हैं। क्या ये वही खुशफहमियां नहीं जो कल किसी और को थी, वो आज हमें हो गई? कि हमारा क्या बिगड़ेगा? माजी के बुजुर्गों के साथ निस्बत जोड़ के इस तरह मुतमईन बैठते हैं कि कौन है जो हमें जन्नत से रोके। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें इन नबियों के किस्सों से और इनकी कहानियों से ये सबक सीखने वाला बना दे कि कल किसी को निजात विरासत में नहीं मिलेगी। आज अगर अपनी जिंदगी में हम अपने बच्चों को अपने साथ लेके दीन की तरफ जाएंगे तो अल्लाह ताला फिर हमारे बाद भी उनको दीन पे रखेगा। और देखा गया कि अल्लाह ताला फिर उतनी ही तेजी से नौजवान नस्ल को दीन की तरफ भी ला रहा है। आज भी आप मस्जिदों में देखें तो सफेद दाढ़ियों से ज्यादा काली दाढ़ियों वाले दिखेंगे। आज भी माँ बेहिजाब है तो बेटी साथ हिजाब में, आज भी बाप मस्जिद में नहीं जाता तो बेटा जाता है, इसलिए कि हर चीज फिर एक वक्त के बाद पलटती है। अल्लाह ताला हमें खैर के साथ अपने दीन की तरफ लगा दे और हम बेवकूफ होने से बच जाएं। अल्लाह ने इब्राहिम के तरीके को अकलमंदी का तरीका कहा। यहाँ आप देख रहे हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले के सारे किस्से हैं और बार बार मुस्लिमून की बात है। मुस्लिमून मुस्लिमून, क्या पता चलता है कि इस्लाम अल्लाह के नबी से नहीं शुरू हुआ, बल्कि ये इस्लाम तो हर दौर में था। इसलिए कि इस्लाम कोई गिरोह नहीं, कोई कल्ट नहीं है। इस्लाम एक सही अंदाज़े फिक्र का नाम है, इस्लाम एक तरीके का नाम है। हम अपना नाम मुस्लिम रख लें अगर हमारे तर्ज़ ज़िंदगी और हमारी ज़िंदगी गुजारने की तरजीहात इस्लाम वाली नहीं, तो हमें नहीं पता कि कल हम कहाँ होंगे। अल्लाह ना करे कि हम तो अपने आप को एक सफ में खड़ा करें और कहा जाए कि यहाँ नहीं, आपको तो किसी और जगह जाना है। अल्लाह ताला दुनिया में भी इस्लाम पे रखे और कल आखिरत में भी हम इस्लाम ही की सफ में हों। आगे देखेंगे, वकालू कूनू हूदनौ नसारा तहतदू। ये कहते हैं कि यहूदी नसरानी बन जाओ तो हिदायत पाओगे। आप देख रहे हैं कितनी तकरार है, पारे का इख्तिताम है और तकरार है फिरकाबाजी की। यहूद क्यों डूबे? फिरकाबाजी की वजह से। और आज के मुसलमान का भी बड़ा मसला फिरकाबाजी है। अब देखें कि कितने मसले हैं मुसलमानों को मजमुई तौर पर, उसकी कम फिक्र है। टेक्नोलॉजी में हम पीछे हैं, साइंस में हम पीछे हैं, हमारी सड़कें टूटी हुई, गंदे घर हमारे, गटर हमारे उबल रहे, हमने तो इस्लाम से सफाई तक न ली, हम बाकी चीजें कहाँ लेंगे? और हम झगड़ रहे हैं सिर्फ इस बात पे कि तुम मेरे गिरोह में आ जाओ, तुम मेरे जमात में आ जाओ। अल्लाह ताला हमें एक ऐसा गिरोह देना चाहता है कि जिस पे किसी का रंग ना हो, उसी का तस्करा इंशाल्लाह पारे के आखिर तक चलेगा। फरमाया, वकालू कूनू हूदन औ नसारा तख्तदू। ये कहते हैं यहूदी नसरानी बन जाओ तो हिदायत पाओगे, तुम कहो बल्कि सही राह पर मिल्लत इब्राहिमी वाले हैं। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम खालिस अल्लाह के परस्तार थे और मुशरिक ना थे। ए मुसलमानों, तुम सब कहो कि हम अल्लाह पर ईमान लाए और इस चीज़ पर भी जो हमारी तरफ नाजिल की गई, और जो चीज़ इब्राहिम इस्माइल इसहाक याकूब अलैहिस्सलाम पर और इनकी औलाद पर उतारी गई, और जो कुछ अल्लाह की तरफ और जो कुछ अल्लाह ताला की जानिब से मूसा और ईसा अलैहिस्सलाम और दूसरे अम्बिया अलैहिस्सलाम दिए गए, हम इनमें से किसी के दरमियान फ़र्क नहीं करते, हम अल्लाह के फर्मा बरदार हैं। फ़ैना मनु बिमिस्लि मा अमनतुम बिही फ़क़द इहतदऊ। अगर वो तुम जैसा ईमान लाएं तो हिदायत पाएं, और अगर मुंह मोड़ें तो वो सरीख यानी खुले इख्तलाफ में है। अल्लाह ताला इनसे अनकरीब आपकी किफ़ायत करेगा और वो खूब सुनने और जानने वाला है। सिबगत अल्लाह व मन अहसनु मिन अल्लाह सिबगा व नहनु लहू आबिदून। अल्लाह का रंग इख्तियार करो, अल्लाह ताला से अच्छा रंग किसका होगा, हम तो इसी की इबादत करने वाले हैं। आप कह दीजिए, क्या तुम हमसे अल्लाह के बारे में झगड़ते हो जो हमारा और तुम्हारा रब है? हमारे लिए हमारे आमाल हैं और तुम्हारे लिए तुम्हारे आमाल, हम तो इसी के लिए मुखलिस हैं। क्या तुम कहते हो कि इब्राहिम और इस्माइल और इसहाक और याकूब अलैहिस्सलाम और इनकी औलाद यहूदी या नसरानी थे? कह दो, क्या तुम ज्यादा जानते हो या अल्लाह ताला? अल्लाह के पास शहादत छुपाने वाले से ज्यादा जालिम और कौन है? और अल्लाह ताला तुम्हारे कामों से गाफिल नहीं। ये उम्मत है जो गुजर चुकी, जो उन्होंने किया उनके लिए और जो तुमने किया वो तुम्हारे लिए, तुम इनके आमाल के बारे में सवाल न किए जाओगे। इसलिए हर एक को फिर अपने अमल की फिक्र करनी है। ये थी आयत नंबर 135 से 141, 135 से 141। इसका उनवान है, नेकी विरसे में नहीं मिलती। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दीन की तरफ लोगों को बुलाते थे, ये दीन इब्राहिमी था। इसी दीन के साथ यहूद और नसारा ने खुद को भी मुंसलिक किया हुआ था, फिर वो आपके मुखालिफ क्यों हो गए? ये एक ऐसा सवाल है जो हर साहिबे अकल के जहन में आता होगा कि जब थे एक ही दीन के नुमाइंदे तो फिर अल्लाह के नबी के मुखालिफ क्यों हुए? इसकी वजह क्या थी कि इन लोगों ने अपने आप को उस दीन से दूर करके जो अल्लाह का दीन था किसी और दीन में रंग लिया था। अल्लाह का दीन कौन सा था? तौहीद वाला दीन था, इताअत और सबमिशन वाला दीन था, यकसू होने वाला दीन था, फोकस होने वाला दीन था। इसके बरक्स यहूद के पास दीन एक कौमी फख्र के निशान पर बाकी रह गया था। वो फख्र तो करते थे अपने मुसलमान होने पर, लेकिन मानते नहीं थे। ऐसे लोग फिर बड़े से बड़े हक को सामने देखकर भी आंखें बंद कर लेते हैं। ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला पारे के अख्तिताम पर एक ऐसा गिरोह तैयार करना चाहते हैं जो हर रंग से आजाद हो, हर फिरके से आजाद हो, और यहाँ सिबगत अल्लाह ही वमन अहसनु मिनल्लाह ही सिबगा, अल्लाह का रंग, अल्लाह एक रंग देना चाहते हैं। ये कौन सा रंग है? हमारे यहाँ जहाँ कोई मजहबी चीज बनानी होती है उसको सब्ज रंग का बना देते हैं। एक खातून कहने लगी, मैंने कारपेट डलवाना है, क्या मैं सब्ज रंग की डलवाऊं कि नहीं? मैंने कहा मसला क्या है? कहेंगी वो मस्जिद नबी गुम्बद है वो सबज है, तो ये तो बड़ी गुस्ताखी होगी। तो मैंने कहा सारा घास उतरवा दीजिए, अल्लाह ने जो रखा है आपको क्या इतराज है। यानी देखिए ये अकीदत, इसको जब आप दीन कहेंगे कि आप अपने घर में एक खाना काबा की तस्वीर लगा लें और उसके बराबर में आप एक मस्जिद नबी की तस्वीर लगा लें, एक तरफ आप या अल्लाह लिखवा लें, दूसरी तरफ या रसूलुल्लाह लिख दें, और आप कहते हैं माशाल्लाह दीन पूरा हो गया। नहीं, सिबगत अल्लाह ही, अल्लाह का रंग वो रंग है कि जो बंदे के अंदर आता है तो बाहर उतरता है। देखिए कि रंग आंखों से दिखता है ना, इसी तरह जब बंदे के दिल में ईमान आता है ना, तो उसका रंग बंदे के चेहरे से, उसकी आदत से, उसके अखलाक से, उसके जिस्म से दिखता है। फिर देखिए कि रंग चढ़ाना होता है ना, तो पिछला रंग काटना पड़ता है। आपके पास रंग चढ़ा हुआ कपड़ा और आप डायर के पास ले जाएं, उसे कहे इसको रंग दो, तो कहेगा नहीं, पहला उतरेगा तो फिर चढ़ेगा। इसी तरह इस्लाम का रंग लाने से पहले कुफर का रंग उतारना पड़ता है। कुफर के रंग के ऊपर जब इस्लाम का रंग चढ़ जाता है ना, तो इसको निफाक कहते हैं। ये दो रंगा, टाई एंड डाई, ऐसा रंग खूबसूरत तो लग सकता है, देखने में अच्छे लगते हैं टाई एंड डाई कपड़े, लेकिन देर पर नहीं होते। जब तक नहीं धोते अच्छे लगेंगे, जब आप धोएंगे ना तो इतना खराब हो जाएगा कि आप उसको पहन नहीं सकते। बिल्कुल इसी तरह वो शख्सियत जो थोड़ा सा इस्लाम, थोड़ा सा कुफर, थोड़ा सा हिंदुइज्म, एक रस्म हिंदू की ले ली, एक ईसाई की ले ली, एक यहूदी की ली, थोड़ा सा इस्लाम भी डाल लिया, तो वो एक ऐसी खिचड़ी पक जाती है कि जिसके बाद फिर फायदा नहीं होता। फिर अगर कभी आपने डायर्स को ऑब्जर्व किया हो तो आप देखिए कि बाज दफा वो कुछ हिस्से पे वैक्स लगा देते हैं जहां पे रंग नहीं चढ़ाना होता, और फिर उसको जितने मर्जी गहरे रंग में डाल दें वहां बिल्कुल रंग नहीं आता। इसी तरह वो लोग जो अपने दिल पे तासुब की वैक्स लगा लेते हैं, कुलूबुना गुल्फ वाली कैफियत, जो अपने कानों में उंगलियां डाल लेते हैं ना, वो पूरा कुरान भी पढ़ जाएंगे लेकिन उनके ऊपर कुरान का रंग नहीं आता। फिर इसी तरह आप देखिए कि एक लफ्ज बोला जाता है मॉडरेट होना, थोड़ा दीन लो थोड़ी दुनिया लो, थोड़ा नॉन मुस्लिम को खुश करने वाला इस्लाम लो, कुछ अपना इस्लाम लो। तो ऐसा इस्लाम भी आप देख लीजिए कि बजाहर ऐसी शख्सियात लोगों को बहुत अपील करती हैं कि देखो दीन वाले भी हैं और साथ माशाल्लाह अपने सारे काम करते हैं, और लोग सवाल करते हैं कि जब दीन वाले ये चीजें ले दे सकते हैं ऐसे, तो हम क्यों नहीं ले दे सकते? जब इनके घर ऐसे हैं सूद पे, तो हमारे क्यों नहीं है? और वो बेचारे तो ये सोच के कहते होंगे कि चले लोगों को एक आसान दीन मिले, लेकिन नतीजा क्या हुआ कि लोग असल दीन से हट गए। और जब कोई सफेद कपड़ा किसी रंगे हुए कपड़े के साथ होता है ना, तो सफेद पे कुछ ना कुछ असर जरूर आता है। इसी तरह एक खालिस मुसलमान एक बिल्कुल ब्लैंक माइंड वाले शख्स के पास बैठेगा ना, उसको अपना रंग जरूर देगा। आज हम अपने आप को देखें, लाखों की तादाद में हमारे इर्द गिर्द नॉन मुस्लिम फिर रहे हैं, क्या हम उनको रंग दे रहे हैं कि ले रहे हैं? क्या हमारा रंग कच्चा है कि पक्का रंग है? कच्चे रंग की कोई कीमत नहीं होती। आप कहते हैं महंगा ले लो, लेकिन अच्छा लो, क्योंकि ये सस्ता लेंगे आज लेंगे कल खराब हो जाएगा। सस्ता रंग कोई नहीं लेता क्योंकि कच्चा है। आज मुसलमान का रंग कच्चा है कि पक्का है? क्या हम रंग लेने वाले हैं कि देने वाले हैं? एक होता है काला कपड़ा और एक होता है हल्का कोई पिंक ले लें। काले कपड़े की क्या खूबी है? आप उसको सारा दिन पानी में और रंग में पकाते रहे ना, जब निकालेंगे तो वो काला ही रहेगा। और इसके बरक्स अगर आप किसी लाइट कलर को लेके देखें, आप उसको थोड़ा सा भी किसी रंग वाले कपड़े के करीब भी छोड़ देंगे ना, तो उसकी छींटें पड़ जाएंगी। जब बंदे के अंदर इस्लाम का रंग नहीं आता ना, तो वो एक ऐसी ही फीका कपड़ा, कोई छींट पड़ी फौरन ले ली, इम्प्रेस हो गए, आजकल ये ट्रेंड है, आजकल ये रिवाज है, सारा दिन इसी गम में मुबतला है, इसको छोटा करना है, इसको बड़ा करना है। गम ही ये है, आज ये फैशन है तो आज वो फैशन है, और हम जैसे अनाड़ी और जाहिलों को पता ही नहीं होता कि फैशन क्या है। अगर चंद लोग एहसान ना करें और हमें ना बताएं, तो हमारे तो 10-15 साल से वही कपड़े चल रहे हैं जो आज भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे। शुक्र है 10 साल बाद फिर अप टू डेट हो गए, ना छोटे किए वो फिर बड़ों का रिवाज आ गया। अच्छा ठीक है, क्या हरज है? यानी आप देखिए कि इंसान कहाँ जा रहे हैं, किन रंगों के पीछे जाते हैं। गौर कीजिए, कभी भी इसके बाद अगर रंग वाले कपड़े को देखने के इत्तफाक हो, तो इस मिसाल को जरूर सोचिए और पूछें कि क्या काला रंग आ गया? क्या इस्लाम का रंग मेरे अंदर आ गया? अल्लाह की मोहब्बत का रंग, इताअत का रंग, आजजी का रंग। अल्लाह के आगे झुकने का रंग जब आता है तो इंसान को यकीन करें कुछ नहीं अच्छा लगता। मैं कहती हूँ लोग किन चीजों पे मरते हैं, ये चीजें क्यों अट्रैक्ट नहीं करती? इसलिए कि जब इस्लाम का खूबसूरत रंग मिल जाता है तो उसके बाद कोई कहाँ जाएगा। फिर आप देखिए कि आयतों में पहले मुस्लिमून की बात आई, फिर आबिदून की बात आई, फिर मुखलिसून की बात आई। यही सारे स्टेप है इस्लाम के। पहले बंदा मुस्लिम होता है, अंदर इस्लाम आता है, फिर उसकी इबादत निखरती है, इबादत होती है, इताअत आती है, और जितनी इताअत आती जाती है ना उतना मुखलिस होता है। बस लोग दीन की तरफ आते हैं ना तो बड़े परेशान होने लगते हैं, कहते हैं देखो पता नहीं अब तो और ही गुनाहगार हो गए हैं, कल तक तो सुनते नहीं थे, जो कर रहे थे ठीक है, तो अब तो सुन के भी अमल गलत कर रहे हैं, तो फिर क्या करें? तो यहाँ इस मिसाल को नोट कीजिएगा, पहले मुस्लिम, फिर आबिदून, फिर मुखलिसून। इखलास तो बड़ी ही देर से आता है, इस्लाम बंदे के दिल में एक पौधे की तरह आता है। अगर आज इन बातों को सुन के दिल में बीज भी डल गया ना नेकी का, तो आप अपने आप को खुशकिस्मत समझिए, इंतजार कीजिए, वक्त दीजिए, चंद दिन के बाद कौम्पल निकलेगी, फिर कुछ दिन के बाद पौधा निकलेगा, फिर उसके बाद पत्ते लगेंगे, और एक वक्त आएगा कि आप इस्लाम के फल पाएंगे। ये मरहले होते हैं, ये मुनाफकत नहीं है। निफाक क्या कि इंसान मुतमईन होकर घर बैठा रहे कि मुझे जरूरत नहीं, आई एम फाइन। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपने रंग में रंग ले, और जो गलतियां और जो कोताहियां हमसे इस पारे के अंदर हो गई उसको माफ करते हुए मजीद अच्छी तरह से करने वाला बना दे। पहला पारा पूरा हुआ। सुबहान रब्बी का रब्बिल इज्जत यम्मा यसिफून, वसलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।